some of them are. थोड़ा सा उधर ही जेकब से आगे देर रेस्टोरेंट कॉल ली, सूसे ली का रेस्टोरेंट है, प्रॉब्ली ओनली जो एक ज़माने में यू नो मिशेलन स्टार शेफ होते थे. तो ही हैज़ एन एक्सलेंट एशियन फ्यूजन रेस्टोरेंट. दे हैव दिस अमेजिंग सैलड विच स्लॉ, दे कॉल इट सिंगापुरियन स्लॉ. मेरे ख्याल को इफ आई रिमेंबर करेक्टली कोई 19 या 21 इंग्रेडिएंट्स के साथ वो सैलड बनती है.
क्या बात है जी. तो ये एक्सपर्टीज भी आप ले सकते हैं. एक अच्छा म्यूजिकल शो तो एंजॉय करेंगे, लेकिन ये कि अच्छा खाना खा के भी पहुंचिए.
सुशी प्लेस पे आप हमें ले गए थे वो साथ ही एक दफा, याद है?
वकास को तो लगता है भूख लगी हुई है.
अब इतना सारे मेन्यू बताएंगे, जेकब्स का नाम बताएंगे, जेकब्स केक हाउस बताएंगे.
सो या नंबर ऑफ सुशी, जे बिस्ट्रो इज राइट देयर जो रिचमंड के ऊपर है. दे हैव वो जो टॉर्च सुशी नहीं होती, दैट इज देयर. नंबर ऑफ अदर प्लेसेस, मतलब डिपेंड करता है किस उस कैटेगरी में. उसके बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक्चुअली रॉयल थॉमसन हॉल के राइट ऑपोजिट इज अ जैपनीज, नॉट जैपनीज, इज अ मैक्सिकन रेस्टोरेंट, वन ऑफ द नाइसर मैक्सिकन रेस्टोरेंट. उनका नाम मेरे इस वक्त ज़हन से निकल रहा है, किंग स्ट्रीट के ऊपर. बट देर लॉट ऑफ टन्स एंड टन्स ऑफ प्लेसेज इन दैट जनरल एरिया. देर इज वॉलोज विच इज अ ग्रीक प्लेस अप देयर. देर इज अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट रोजालिंडा विच इज नॉट टू फार. असेंबली हॉल which is like a combination of उसमें डिफरेंट फूड स्टेशन है जो शहर के बड़े अच्छे अच्छे से रेस्टोरेंट हैं, उनके डिफरेंट जगहों के फूड स्टेशन है. तो वो दैट इज नॉट लिटिल बिट यू नो, मतलब 10 मिनट की वॉक वगैरह होगा, आई वुड एक्सपेक्ट. सो मतलब आई थिंक
आप सोच में पड़ जाएंगे कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं. तो ये आप ये किस दिन होगी ये सारी सिचुएशंस, आप ये आप बताएंगे.
18 यानी जुमे का दिन, मुबारक दिन,
जुमे का दिन 18 अक्टूबर को. और ये क्यों हो रही होगी ये चीजें, आप वहाँ क्या कर रहे होंगे?
भाई जाहिर है उसी की रूह की गजा है और पेट की गजा भी वहाँ मिल जाएगी, सब कुछ होगा. और जहाँ राहत फतेह अली खान साहब होंगे तो वहाँ पर जरूर पहुँचना है.
बिल्कुल सही,
रौनक भी बड़ी होती है. तो और
फ्राइडे नाइट है, आपने रौनक देखनी है, शो देखना है, खाना खाना है. और ये फ्राइडे आपने कहा पूछा क्यों रखा, तो इसलिए रखा है कि अगर आपको रात को 12-1-2 भी बज जाए
तो सुबह
सैटरडे है, वर्किंग डे नहीं है,
दो छुट्टियां आ जाती है ना. फ्राइडे का ये भी मजा होता है कि फिर लगता है कि अभी दो छुट्टियां बाकी हैं. तो हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, तो चले इनको भी ले लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो, नहीं मुझे लगता है इन्होंने लाइन थोड़ी. हेलो,
अदनान भाई की जो फूड ऑप्शन थी वो ज्यादा लंबी हो गई, तो जो मेन्यू काफी बढ़ गया था.
एक्सपीरियंस लगता है, तो आप डेफिनेटली दोबारा कॉल कर लें, कोई बात नहीं. 416-60-01778 हमारा टेलीफोन नंबर है. सिटीस्केप के अदनान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो गुंदल एक्सचेंज के वक्कास गुंदल साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. और हम बात कर रहे हैं, ये जो जबरदस्त शो आ रहा है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो,
अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है.
आप कैसे हैं आप लोग?
जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. वालेकुम सलाम.
और गोंदल भाई बहुत, वो हमने वो टिकट ले लिए थे, दो टिकट ऑनलाइन.
अच्छा
हाँ, वो मून आने से पहले वो जो है ना, उस दिन तो वो शोदा है करबला का चहलू में, तो टिकट रिफंड हो सकते हैं?
सर ये आप 9058495551 पे फोन कर लें, ज़िया साहब आपको इस बारे में गाइड कर देंगे.
जरा डेट जरा देख लिया करें ना, मून का भी ना.
जी इंशाल्लाह जी,
चलें बिल्कुल. आप रابطہ कर सकते हैं, नंबर आपको हम दिए देते हैं, आप इस नंबर पर رابطہ कर लीजिएगा. ये जो शो है ये जबरदस्त, इसको मिस नहीं करना. 18 अक्टूबर फ्राइडे का दिन होगा, आप लोग जरूर पहुंचिएगा. अगर एक आप अच्छा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो एक अच्छी गायकी, एक अच्छी आवाज जो कि ना सिर्फ मैं कहती हूँ कि अब तो खैर इंटरनेशनली वेल नोन राहत फतेह अली खान साहब की आवाज जो है उसको सुनने के लिए दूर दूर से पहुंच सकते हैं. जैसे लास्ट टाइम मुझे याद है अमेरिका से भी लोग आए थे, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग दूर दूर से भी आ रहे होंगे इस प्रोग्राम को सुनने के लिए.
देखें जी, जहां जहां रेडियो 770 AM सुना जा रहा है वहां वहां से लोग आ रहे होंगे. और आई कैन बेट यू कि 770 की रेंज सबसे ज्यादा है, भले विंडसर हो, आपका डिट्रॉयट हो, लंदन हो, बफलो हो,
दुबई से भी,
वो तो खैर ऑनलाइन चला जाता है, लेकिन जहां तक रेडियो फ्रिक्वेंसी है बहुत बड़ी कवरेज एरिया है 770 AM का. टिकट्स जो है वो $95 से लेके $500 तक की रेंज के टिकट्स अवेलेबल हैं. डिफरेंट टिकट्स हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं $95 से लेके $500 तक. टिकट के लिए आपको लोकेशंस बताता चलूं कि कड़ाही बॉयज स्कारबो लोकेशन ईस्ट एंड में, आप लॉरेंस एंड वार्डन का इंटरसेक्शन है वहाँ पर जा सकते हैं. रात लेट खुला होता है 11 बजे तक, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं. या आप कड़ाही बॉयज की ही वेस्टर्न लोकेशन जो मिसिसागा में है, वो भी रात 11 बजे तक खुला होता है, वहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं, जो कि हार्टलैंड में वाकई है, सिटीस्केप और CIBC वाले प्लाजा में. इसके साथ साथ आप गैलेक्सी मनी ट्रांसफ़र से इकबाल फूड वाली लोकेशन जो है वहाँ से, या डीएमएल के ऑफिस से आप फ़ोन करके ले सकते हैं 9058495551। बज मैक्स और सिटीस्केप जो है ये प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर हैं हमारे इस शो के लिए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनके। 18 अक्टूबर को उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का शो 8 बजे रॉय थॉमसन हॉल, या अगर आप दूर सुन रहे हैं आप नहीं पहुँच सकते, टिकट अपनी अभी लेना चाहते हैं, royalthompsonhall.com की वेबसाइट पे जाकर भी आप अपनी टिकट ले सकते हैं। वहाँ पे चार्ट मौजूद है, सीट बाय सीट अपनी सीट आप सेलेक्ट करके उसकी प्राइस आपको उसी वक्त नजर आ जाएगी, वो आप अपनी सीट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि जाहिर है अच्छी जो जगह होती है जहाँ पे बैठ के एक आप इंजॉय कर सकते हैं वो तो पहले ही निकल जाती है, तो बेहतर यही है कि वक्त से पहले जो है वो अच्छी सीटों को बुक करा लिया जाए। राहत फतेह अली खान साहब अपने पूरे म्यूजिशियंस के साथ जो कि ठीक ठाक उनके 42
लोगों के साथ
म्यूजिशियंस हैं,
मतलब ये दिस इज द लार्जेस्ट इज एवर परफॉर्म, मतलब इतना यूजली तो मतलब मुझे 6 to 8 पीपल मैक्सिमम, तो
नॉर्मली होता है या कभी कवाली का एक थीम लेकर चल रहे होते हैं पूरे अपने टूर में, या फिल्मी सॉन्ग्स की या सूफियाना, लेकिन इस दफा तीनों के तीनों चीजें जो आपको इकट्ठे आपको मिलेंगे।
प्लस प्लस इज आल्सो अ फुल प्रोडक्शन, तो मतलब के और स्पेशली उस वेन्यू पर मतलब के जो पूरी जो है ना वीडियो प्रोडक्शन है यू नो बिहाइंड, मतलब आप देखेंगे तो इट वुड बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इट्स नॉट ओनली ऑडियो वाइज लाइक लिसनिंग के हिसाब से वो होगा, बट फ्रॉम अ विजुअल पर्सपेक्टिव इट आल्सो वुड बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस।
10 साल पहले राहत फतेह अली खान का शो रॉय थॉमसन हॉल में ही देखा था।
अच्छा,
उसके बाद मैंने बड़े शो देखे लेकिन वो शो मुझे आज भी याद है। ये मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि आप ये शो आपने आप लोगों ने लिसनर्स ने भी पहले देखे होंगे, लेकिन ये शो आपको कम से कम 10 साल जरूर याद रहेगा कि कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और क्या क्वालिटी थी प्रोडक्शन की, साउंड की, विजुअल इफेक्ट्स की, वो आप इनको इंशाल्लाह याद रहेगा और मजा दुगना मजा आएगा अगर आपने पिछले शो देखे हुए हैं तो।
बिल्कुल इसको मिस नहीं कीजिएगा, फिर ये ना कहिएगा कि खबर नहीं हुई, क्योंकि खबर तो आपको देते जा रहे हैं बताते जा रहे हैं, फिर डोंट मिस दिस शो। हमारे साथ एक कॉलर हैं, लेते हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
जी जी बताएं,
ये कौन साहब है आपके साथ?
जी विकास बोल रहा हूँ जी, और अदनान बशीर साहब हैं।
विकास साहब बड़ा नेक काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और ये जितना पैसा बचेगा इसको कश्मीर को देंगे या अपने पास ही रखेंगे, ये क्योंकि बड़ा नेक काम कर रहे हैं।
सर हमने तो नहीं काम नेक काम कर रहे हैं, इट्स एन एंटरटेनमेंट इवेंट। और जी
हेलो,
जी जी
नहीं कर रहे
सर, ये इट्स एन एंटरटेनमेंट इवेंट, नेकी के और बहुत सारे काम है।
देखिए मतलब जो आई एम सॉरी जी, आपका मैंने नाम देखें
वकास भाई, जरा ये बह के ये दीन को भी सामने रख लिया करो, कुछ दिन ऐसे
बिल्कुल वो सारे काम भी होते रहे हैं। आपको बताइए कि अभी गांधी साहब भी आए हुए थे, हमने इस तरह के सारे काम किए थे, तो ये जो शो है ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। अगर आपका इस शो के बारे में कुछ सवाल है तो आप प्लीज कीजिए।
फिर भी दीन को भी सामने रखा करें, कोई मुहर्रम है सफर है कौन सा दिन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा।
जी जी बिल्कुल आपको बिल्कुल बताते चलेंगे, बिल्कुल सारा कुछ आगे करेगा। एनीथिंग एल्स?
थैंक यू
जी। तो चलिए प्रोग्राम को लेकर चलते हैं, ये रेडियो प्रोग्राम है, इट्स एन एंटरटेनमेंट, और इसमें कोशिश हम यही करते हैं कि आपकी एंटरटेनमेंट भी हो और साथ साथ दीन से मुतल्लिक भी सवाल होते हैं, उलमा को भी लेकर आते हैं, सब कुछ मिलके ही चलता है। तो चलिए थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। आई माई सेल्फ एंड मी, राहत फतेह अली खान साहब, 18 अक्टूबर जुमे का दिन होगा, जरूर देखिएगा वहां पर। जैसे कि अब हमारे अदनान साहब ने बताया कि खाने पीने के भी जबरदस्त रेस्टोरेंट हैं, जाके अच्छा सा खाना खाइए, और फिर एक मौसीकी का आपने जबरदस्त प्रोग्राम जरूर एंजॉय करना है। टिकटों के लिए प्लीज एक दफा फिर से नंबर दे दीजिए।
जी 905 डीएमएल का जो ऑफिस है 9058495551, या आप ऑनलाइन जा सकते हैं royalthompsonhall.com पे, या आप टिकट्स रिसीव कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं कढ़ाई बॉयज़ की दोनों लोकेशंस स्कारब्रो और हार्टलैंड से, या गैलेक्सी मनी ट्रांसफ़र एरन मिल्स इकबाल फूड के अंदर जो लोकेटेड है वहाँ से, या डीएमएल के ऑफिस में जो कि विंसर चर्चिल और बर्न थ्रो पर वाक़ है वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, या आप हिल टॉप फाइनेंशियल के ऑफिस से भी टिकट ले सकते हैं।
इतनी सारी ऑप्शंस बता
इतनी सारी ऑप्शंस हैं। होम डिलीवरी वाली ऑप्शन हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, वाजिद मलिक साहब के कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वाजिद मलिक, वहाँ से आप उन्हें अगर फ़ोन करें 5 या उससे ज़्यादा टिकट्स हैं तो वो आपको घर पर डिलीवर कर देंगे वेस्ट जीटीए में पील रीजन में बेसिकली, या इटोबिको तक जो है वो वाजिद मलिक साहब आपको डिलीवर भी कर देंगे 5 टिकट्स या उससे ज़्यादा, और इसके साथ साथ आपको फ्री सीएमए आपके घर की वैल्यूएशन फ्री करके देंगे आपको वाजिद मलिक साहब।
ठीक है जी।
और अगर लिस्टिंग करेंगे तो आपको हस्बैंड एंड वाइफ की 2 टिकट्स वाजिद मलिक साहब से फ्री मिल जाएंगी।
चलें बिल्कुल ज़रूर रब्ता कीजिएगा। राहत फतेह अली खान साहब 18 अक्टूबर, ये जो बस आप वीकेंड और उससे नेक्स्ट वीकेंड फ्राइडे वाला दिन होगा, ज़रूर आप पहुँचिएगा। और फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन 416-9898-555 पर रब्ता कर सकते हैं।
416-9898-555 आसान नंबर 9898555 या 9058499551।
चलें बिल्कुल, इस पे रابطہ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया जी
साहब आपका भी और अदनान साहब आपका भी कि आप लोग आए स्टूडियो और हमें इतना जबरदस्त प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। प्लीज डोंट मिस इट, क्योंकि ये इवेंट वाकई सदियों में ही आता है ऐसा, और ऐसे इस हॉल में। थैंक यू सो मच,
बहुत शुक्रिया जी।
बिल्कुल, और इस वक्त मेरे साथ खेलों के बारे में भी आपसे बात की थी, और मेरे साथ इस वक्त जीशान जो है वो पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं। जीशान, क्या खबरें हैं? वो तो मैं खबरें पढ़ रही थी और उसमें एक डरावना ख्वाब ही था, ये एक कि जिसमें हमारी क्रिकेट के साथ हुआ क्या माजरा, हम कैसे हार गए
जी। अस्सलाम वालेकुम सरबत, साजावास WTR 770 के सभी सुनने वालों की तरफ से, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम सरबत जी। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि एक बहुत ही भयानक आज मंजर हमें देखने को मिला कजाफी स्टेडियम में, जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही वनडे में, जिस तरह से ये सीरीज का आगाज हुआ, स्क्वाड का अनाउंस हुआ था, तो वहां से अंदाजा हो गया था कि ये पाकिस्तान जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। उसके इसमें जो है उमर अकमल भी शामिल थे और अहमद शहजाद भी शामिल थे, तो सीरीज जो है अनाउंस भी हुई, फिर वनडे सीरीज जो है हम 2-0 से जीत गए पहला मैच, जो है बारिश की नज़र हो गया था। फिर लाहौर में जब T20 सीरीज आई, तो मेरी यानी कि थिंकिंग यही थी कि मैं यही चाह रहा था कि या मेरा जो सोचने का, जहाँ तक ये टीम जो लेके चल रहे हैं मिसबा या सरफराज, मुझे ये लग रहा था कि ये सीरीज जो है हम 3-0 से जीत जाएंगे, लेकिन उसके बरक्स जो है हम आज 3-0 से हार गए। तो बहुत ही नाकस परफॉर्मेंस रही है, फील्डिंग हमारी जो है इतनी अच्छी नहीं रही है, कैचेस के हमने मौके छोड़े हैं, रन आउट के हमने जो है मौके छोड़े हैं, और विकेट कीपर जो सरफराज कैप्टन भी हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आए हैं फील्डिंग के दौरान, बैटिंग के दौरान, बैटिंग में भी जो है वो खातर खा को इस तरह की इनिंग ना खेल सके कि वो मैच को जो है आखिरी लम्हे तक ले जा सकें या अपनी टीम को जीत के नज़दीक तक ले जा सकें, लेकिन वो फेल हुए। फखर जमान भी और बाबर आजम फेल हो गए इसमें टोटली, और मिडिल ऑर्डर जो है हमारे पास कोई तैयार नहीं था, फिनिशर हमारे पास है नहीं, सिर्फ शादाब खान जो कि ऑलरेडी उनसे बॉलिंग में जो है मुश्किलात का उनको सामना है, विकेट वो ले नहीं रहे, रन जो है वो देने यानी कि काफ़ी वो दे रहे हैं, तो बॉलिंग की वजह से जो है वो बैटिंग पर भी जो है प्रेशर में है। बात करते हैं हम वहाब रियाज सीनियर जो हमारे पास बॉलर हैं, वो भी काफ़ी थक चुके हैं, और जिस तरह से उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उनका इरादा है कि ये शॉर्टर जो वर्जन है ODI और T20 वो खेलेंगे, लेकिन वहाब रियाज भी जो है वो कुछ इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, और आमिर भी जो है रिलेटिवली उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उस्मान शिनवाड़ी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी ODI में, फिर उनको जो है 2 T20 के लिए जो है उनको ड्रॉप कर दिया था, और फिर आप बाद में जो है उनको मौका दिया गया। एक और जो जो एक्सपेरिमेंट जो तजर्बा किया वो हारिस सोहेल पे किया उन्होंने, हारिस सोहेल को जो है ODI में यानी कि आप निकालते हैं तो टीम में डालते हैं, तो इस तरह की जो कोशिश है या जो नादानी है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेस या मैनेजमेंट स्टाफ या मैं कहूँगा चीफ सेलेक्टर ने जो की है, उन्होंने जो है उसका अजाला देना पड़ेगा। तो लेट्स सी के मिसबा का ये कहना है कि पहली सीरीज है, उनको टाइम मिलते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अब उमर अकमल और अहमद शहजाद की इस शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद जो है इनको जो है क्रिकेट में कभी चांस मिलेगा। तो तीसरा मैच में बताता चलूँ कि एक पाकिस्तान की तारीख में बहुत अच्छा सा एक इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि कजाफी स्टेडियम में आज जब मैच शुरू हुआ तो वो उसकी बाउंड्री लाइन पिंक थी, और तो एक काफ़ी अवेयरनेस के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए पाकिस्तान में जो है इस तरह के इवेंट यानी कि लोगों में जो अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो इस तरह की चीज़ें की गई ग्राउंड के अंदर, और शर्ट जो है पिंक थी और खिलाड़ियों ने उसे साइंस की, एक चैरिटेबल मैच था जो मेरे हिसाब से, मुझे ये लगता है कि इस तरह के और भी जो टूर्नामेंट होम सीरीज होंगे उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उस हवाले से। लेकिन आज सीरीज का जो तीसरा मैच है वो पाकिस्तान जो हार गया, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे, और पाकिस्तान जो है ये टारगेट चेस करने में बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम रही, और नाकाम इस सेंस में रही कि वैसे तो सिर्फ 13 रन से श्रीलंका की टीम जीती है, लेकिन ये कि ओपनिंग जो स्टैंड जो फखर जमान है वो पहली गेंद पे आउट हो गए, बाबर आजम जो है वो बिल्कुल दबाव में खेल रहे हैं आजकल, फिर जो बैटिंग को जो हमें संभाला वो संभाला हारिस सोहेल ने, उन्होंने 52 रन की जो है बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन वो फिनिशिंग जो में एक हमारा टर्निंग पॉइंट था इमाद वसीम फेल हुए, आसिफ अली जो बहुत ज़्यादा हिटर हैं वो भी जो है नाकाम रहे, सिर्फ एक रन बनाने के बाद आउट हो गए। तो पाकिस्तान जो है ये सीरीज 3-0 से हार गया, और ये दूसरी दफ़ा मौका है कि पाकिस्तान ये सीरीज 3-0 से हारा है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान ये सीरीज जीता है। तो ये सीरीज जीतने के बाद जो है तो श्रीलंका अभी भी 7वें नंबर पर, पाकिस्तान नंबर 1 पर है और इंग्लैंड नंबर 2 पर है। इंग्लैंड सीरीज खेली गई ऑस्ट्रेलिया से, अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत जाती है तो इंग्लैंड नंबर 1 पे आ जाएगी और पाकिस्तान नंबर 2 पे आ जाएगी। तो आगे सीरीज जो आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है किस तरह की टीम जो है तश्कील देते हैं कि सरपास और मेज़बान का क्या लायमल होता है, और कोच जो चीफ सेलेक्टर और कोच जो मेज़बान लगे हैं देखते हैं कि वो किस तरह जो है टीम के सिलेक्शन करते हैं, उनके आगे प्लान्स में क्या क्या शामिल हैं। कोच वकार यूनिस भी हैं उनके साथ हैं, और हमारे बहुत से शायकीन जो हैं वो इंडियन ऑडियंस भी है, तो उनके लिए बताता चलूँ कि इंडिया और साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट में जो है कल खेला जाएगा। पहला मैच जो है साउथ अफ्रीका इंडिया ने जो है 230 रन से जीत लिया था। जी
अच्छा, थैंक यू सो मच जीशान, आपने थोड़े से वक्त में हमें इतना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खेलों का ये जो सेगमेंट है ये आप तक पहुंचाने में हमें तावुन दिया है अफजल पराचा ने। अफजल पराचा के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आपने कोई भी रियल स्टेट से मुतालिक घर खरीदना हो, बेचना हो या इन्वेस्ट करना हो तो इनके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनसे राबता कर सकते हैं। और उनका राबते का नंबर जो आपको दे देते हैं 6478904205 पर आप राबता कर सकते हैं। बर्लिंगटन में मार्कम पे इनके पास जो प्रोजेक्ट थे ये खत्म हो रहे हैं वेनसडे को, आपने अगर इनके बारे में राबता करना है तो भी आप इनसे राबता कर सकते हैं। बर्लिंगटन के बारे में हम बताते आ रहे थे आपको प्रोजेक्ट में, और मार्कम में जो इनका प्रोजेक्ट था वो खत्म हो रहे हैं सैटरडे को, तो उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो अफजल पराचा 6478904205 पर आप राबता कर सकते हैं। आजकल आप काफी नाम सुन रहे हैं स्टेला कॉन्डोस का, ये ब्रैम्पटन स्टील्स और हॉरंटेरियो के इंटरसेक्शन पे बिल्कुल जहां पर शेरिटन कॉलेज है वहां पर ये जबरदस्त कॉन्डोस स्टेला कॉन्डोस के नाम से हैं। और आप इसके फ्लोर प्लान के लिए या जो इसकी प्राइस लिस्ट है या अगर आपने कोई यूनिट बुक करवाना है इसमें तो बहुत ही हॉट लोकेशन है, बिल्कुल शेरिटन कॉलेज जहां पर शॉपर्स वर्ल्ड है वहीं पर आपको मिलता है ये स्टेला कॉन्डोस। तो आप इसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट की भी एक्सेस या अपने फ्लोर प्लान के लिए अफजल पराचा 6478904205 पर आपने रब्ता करना है। इनके पास एक और जबरदस्त प्रोजेक्ट है जो कि लक्स कॉन्डो इन लंदन, जी हाँ बिल्कुल वेस्टर्न यूनिवर्सिटी पर, और ये एक इन्वेस्टर्स की ड्रीम है। 5 साल का रेंटल है, गारंटी देते हैं 5 साल की, फ्री टेनेंट मैनेजमेंट है, फ्री फर्नीचर है, अप्लायंसेस, और 20,000 डिपॉजिट आपको इसके लिए करवाना होगा। ऑलरेडी बन चुका है लीज कॉन्डोज क्लोजिंग 60-90 डेज, और ये 2 बेडरूम है और 2 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है 389,500 पे। जबरदस्त ये एक इन्वेस्टर ड्रीम है ये प्रोजेक्ट जो कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी लंदन में है, लक्सस कॉन्डो। आप इसके लिए राबता कर सकते हैं 6478904205 6478904205, और ये जो कॉन्डोज हैं 2 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है 389,500 6478904205 पर आपने राबता करना है। आज आपने डिबेट जरूर सुननी है 7 बजे सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की, ये डिबेट होगी इलेक्शन डिबेट। हमारे जितने भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं लिबरल कंजर्वेटिव NDP ग्रीन पार्टी या पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा तो ब्रैम्पटन के जो लोकल जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आएंगे तो आप एक राय बना सकते हैं कि आपने वोट किसको देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, आप सब हमारे लिए। आप इसको हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं, इसको फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और हमारा जो ई आवाज़ टीवी है उसके ऊपर भी आप ये लाइव डिबेट देख सकते हैं। तो आज 7 बजे ये डिबेट ठीक शुरू हो जाएगी, देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ब्रैम्पटन जो कि यंगेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, क्या इसके मसाइल हैं उस सब के बारे में जो यहाँ के लोकल इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस डिबेट में आएंगे। मेज़बान फूड रेस्टोरेंट भी हमें तावुन दे रहा है जहां पर आप मज़े मज़े के खाने, आपने चाहे एपेटाइज़र लेना हो, वेजिटेरियन आप खाते हो या अगर आपने कोई भी ये जो चिकन बीफ या लैम के कबाब आप या इस तरह के जो डेली स्पेशल्स हैं वो भी आपको मिलते हैं, ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साजो आवाज का आपने हवाला देना है। और अच्छी बात यह है कि सपोज़ कई दफ़ा देर हो जाती है और फिर कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं होता, तो मेज़बान रात के 2 बजे भी जाएंगे तो आपको खुला मिलेगा। मेज़बान फूड रेस्टोरेंट जहाँ पर हैदराबादी दम की बिरयानी, हलीम, मटन पाया, यूनिमेट, हर तरह का मज़ेदार तड़के वाला खाना आपको मिलता है मेज़बान फूड रेस्टोरेंट पर, 50A रेक्सटेल बुलेवार्ड इन इटोबिको, 11 से लेके सुबह रात के 2 बजे तक खुला होता है। आप फुजेल पुराचा यहाँ पर, पीरजादा यहाँ पर मौजूद होते हैं। फुजेल साहब 6478857572 पर आपने रब्ता करना है। मेज़बान फूड रेस्टोरेंट 6478857572। कोई भी पार्टी करनी हो, केटरिंग करवानी हो, तो एक ही नाम मेज़बान फूड को आपने याद रखना है। स्वागत बैंकवेट हॉल भी हमें तावुन दे रहा है। स्वागत बैंकवेट हॉल जो कि जहाँ पर आप बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस के अंदर आप एक अच्छा बड़ा पार्टी का फंक्शन कर सकते हो, चाहे आपने कोई म्यूजिकल फंक्शन करवाना हो, कोई शादी ब्याह का फंक्शन करवाना हो, कॉर्पोरेट इवेंट हो, तो आप स्वागत बैंकवेट हॉल पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप साजो आवाज का हवाला दे के स्पेशल आपको एक मतलब डिस्काउंट रेट पर भी मिल सकता है स्वागत बैंकवेट हॉल। फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप रब्ता कर सकते हैं 9058219688 6991 मिल्क क्रीक, ये मिल्क क्रीक और डेरी के इंटरसेक्शन पर है स्वागत बैंक्वेट हॉल। ये जो नेक्स्ट सेगमेंट है ये आप तक पहुंचाने में हमें रॉयल एक्सचेंज ने तावन दिया है, जो कि 2003 से बिजनेस में है। इनकी जो नई लोकेशन है अब ये पिकरिंग में खुल चुके हैं, मनी ट्रांसफर के लिए, कैश पिकअप के लिए, बैंक डिपॉजिट कोई भी बैंक हो, और वायर ट्रांसफर करते हैं। मोस्ट रिलायबल एंड फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पैसे भिजवाने हो तो इस्माइल इब्राहिम से राबता कर सकते हैं 416-837-2675 पे आप राबता कर सकते हैं लॉयल एक्सचेंज। इस सेगमेंट को स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी कनाडा ने भी तावुन दिया है, जिसको SILC भी कहते हैं, स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी। ये तमाम वॉलंटियर बेस्ड स्कूल है, यहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो कि एक नेक काम करते हैं। और ये जो 4, 4.5 से लेके 19 साल के चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ, और इसके लिए एलिजिबल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं, यहाँ पर स्कूल जो है ये एवरी संडे को सुबह 11 बजे से लेके, सिर्फ संडे को, एवरी संडे 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक, ये स्ट्रीट फिल्म स्कूल है जो कि मिसिसागा में क्लोज टू एनन मिल्स ब्रिटेनिया, यहाँ पर ये इस्लामिक स्कूल लेगेसी है। ऑल वॉलंटियर और ये कम्युनिटी के लिए किया जाता है। और अब इसकी रजिस्ट्रेशन या इसकी एडमिशन के लिए आप इनसे राबता कर सकते हैं 2019-2020 के लिए। और इसकी जो मंथली फीस है वो $35 है, और रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो $20 है। और इसमें स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी है फॉर ऐसी जो फैमिली जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए भी ये जो है वो हेल्प आउट करेंगे, स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी एंड कनाडा। और इसमें अगर आपने अरबिक लैंग्वेज सीखनी हो, उर्दू जबान सीखनी हो, या फिका की क्लासिक्स फॉर गर्ल्स, तो इसकी कोई फीस नहीं है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट पर आ जाइए www.silc.ca, स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी .ca पर जाएंगे तो आप वहां पर ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और आप राबता कर सकते हैं इसके जो 416-953-3984 वीकेंड स्कूल है, और इट्स ऑल वॉलेंटरी बेस, 416-953-3984 पर आप राबता कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम ओरिएंटल कॉस्ट्यूम के तावन से भी आपके लिए ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। ओरिएंटल कॉस्ट्यूम जहां पर हर तरह के पार्टी वियर या अगर आपने फॉर्मल वियर कपड़े खरीदने हो, अगर आपने जैसे ये जो टॉप्स आजकल आ रही हैं खवातीन की, तो तमाम ब्रांडेड कुर्तीज़ वहां पर मौजूद हैं, ज़बरदस्त प्राइसेज है। साजोबाज का आपने हवाला देना है, ज्वेलरी वहां पर है, छोटे बच्चों के कपड़े मौजूद हैं, अनस्टिच कपड़े मौजूद हैं, यू नेम इट, हर तरह का यहाँ पर सामान। ओरिएंटल कॉस्ट्यूम 3180 रिजवे ड्राइव इन मिसिसागा 9055691515 पर आप राबता कर सकते हैं। 18 अक्टूबर आपने याद रखनी है, जुमे का दिन, रॉय थॉम्सन हॉल, राहत फतेह अली खान शो को आपने एंजॉय करना है। फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन आपने टिकटों के लिए आप राबता कर लीजिएगा, आपको नंबर भी दिए देते हैं, आपने रब्ता करना है 416-989-8555 पर आप रब्ता कर सकते हैं। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में एक और खूबसूरत गीत,
जिनकी बेगम साहिबा मैनू तू बांध ले पक्की यारियों 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 मैं होंदे ना फासले ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बैके सच्चिया मुहब्बत निभाके सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैके
जी हां दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैके के ये आप राहत फतेह अली खान की आवाज़ में नहीं है आई एम सो सॉरी गलती मेरे से हो जाती है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं कोई बात नहीं सुने एंजॉय करें दिल दिया गल्ला
रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं 9 बजे तक लेकिन हम खुले हैं रात 2 बजे तक जी हाँ मेजबान फूड्स लेट नाइट मेन्यू दम की बिरयानी बारबेक्यू निहारी तंदूरी नान खीर हलवा और भी बहुत कुछ सब मिलेगा रात 2 बजे तक ऑनलाइन ऑर्डर्स या फिर फोन कॉल पिकअप मेजबान फूड्स 50 रेक्सडेल बुलेवर्ड इटोबिको कॉल 6478857572 6478857572 मेजबान फूड्स
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹਨ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਟ ਆਫ ਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ
जी सुन रहे हैं प्रोग्राम आप सजो आवाज थोड़ा सा अब ये सफर है सर्दियों में वापस टाइम कम रह जाता है कोशिश यही की थी कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते चलते जाएं और ये स्पॉन्सर्स ही होते हैं जो कि इस तरह का प्रोग्राम आपके लिए हम कोशिश यानी लेकर आ सकते हैं इन स्पॉन्सर्स के ताबुन से ही और सलीम सदीकी का भी नंबर आपको देते चलें भी घर में अगर आपने पेंट करवाना हो तो इंटीरियर एक्सटीरियर पेंटिंग के लिए आप एक ही नाम सलीम सदीकी बहुत ही रिलायबल नाम है गारंटी देंगे आपको और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं आप सलीम सदीकी से रابطہ कर सकते हैं सीनियर्स के लिए खास डिस्काउंट है 6472711974 6472711974 पर आप رابطہ कर लीजिएगा तो चलिए प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम कर लेते हैं और सुनते रहना है आपने प्रोग्राम क्यों इसलिए कि जबरदस्त अभी भी शो जारी है इसके बाद आप जीशान आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें से लेटेस्ट पाकिस्तान की जो बीबीसी की जो खबरें हैं सरवीन के साथ वो आप सुनेंगे इस जस्ट आफ्टर कुछ देर के बाद और उसके बाद फिर गीत नगमों के सिलसिले पूरी रात इसी तरह चलते रहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को सुनने का अपने घरों तक हमें लेके जाने का और ई आवाज़ पर आपने लाइव ये जो इलेक्शन की डिबेट है ये आपने ज़रूर सुनते रहना है आज सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जो है ये लोकल कैंडिडेट की डिबेट्स लेकर आ रही है हमारा फेसबुक पेज ई आवाज़ है और हमारे टीवी के ऊपर आप ये लाइव डिबेट देख सकेंगे आज ठीक 7 बजे ये डिबेट शुरू होगी लोकल लोकल कैंडिडेट्स जो ब्रैम्पटन के हैं, लिबरल के, कंजर्वेटिव के, एनडीपी के, पीपल्स पार्टी, ये जो जितनी जो हैं पांच जो बड़ी इलेक्शन की जो पार्टीज हैं, तो लाइव डिबेट आप सुनिएगा। एक दफा फिर बहुत शुक्रिया तमाम स्पॉन्सर्स का, आप तमाम का जिन्होंने प्रोग्राम को सुना, और आपसे जाते जाते हमेशा की तरह एक इल्तजा करते जाते हैं कि वो तमाम लोग जो अपना सफर पूरा करके सुनिया से जा चुके हैं, उन सब के लिए दुआ करते रहिएगा, और साथ साथ हमारे प्यारे मुजफ्फर भाई साहब के लिए भी कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुमा आमीन। मैं थी सरवत फारूक, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कल फिर दोबारा इसी उम्मीद के साथ कि होगी मुलाकात, आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और मुजफ्फर वारसी के कलाम के साथ अल्लाह
हाफिज़। मुझे इरफ़ान हो जाए ए खुदा, ज़ात का अपनी मुझे इरफ़ान हो जाए, मेरी हर सांस तेरे ताबे फरमा हो
to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it.
This station is now the ultimate power in the universe.
The station with the best music. Best music.
I love the music.
I love radio, music, and more.
आप सुन रहे हैं रेडियो साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारी रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या फिर आज ही eawaz ऑफिशियल ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए। लोकल लाइन पर रेडियो सर्विस के लिए डायल कीजिए 6475571017। eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं। इसके अलावा आज ही रोकू ऐप अपने स्मार्ट टीवी में डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री। हमारे साथ शामिल रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हम खूबसूरत, दिलकश, मजाया, मालूमती और मजहबी प्रोग्राम से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एडवर्टाइजमेंट या फीडबैक के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 6478986245। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमेशा की तरह BBC न्यूज से सेरविन के साथ।
बुध 9 अक्टूबर BBC के प्रोग्राम सरबीन के साथ नाज़िश जफर का सलाम। अस्करी क़यादत की जानिब से हालात में बेहतरी की यकीन दहानी के बावजूद इस्लामाबाद में ताजरों का एहतजाजी मुजाहरा और मुल्क भर में हड़ताल की कॉल। एक नुमाया सरमायाकार ने कहा,
मैन्युफैक्चर भी तो कुछ न कुछ तो करता होगा ना कि वो परेशान है, तो कुछ न कुछ तो होगा ना। दिखता है जितनी प्रोटेक्शन करते हो वो दिखता है पूरी ना दिखाते हो।
इंडिया के जेरे इंतजाम कश्मीर में 40 लड़कियों की इज्तमाही शादी की तकरीब मुनक्कद की गई। एक दुल्हन बोली,
और हम ऐसे निकाहों के बारे में और अपनी बहनों को बोलते हैं आसानी तरीके से आप यहाँ आओ और अपने निकाह करवाओ।
इन मौजूदात पर तफसीलन बात होगी, पहले खास खास खबरें आसिया अंसर से। पाकिस्तान में मुल्क भर के ताजरों ने हुकूमत की इकतसादी पॉलिसियों और ताजरों पर आयद टैक्सेस के खिलाफ आज वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाज किया। FBR हुकाम के साथ होने वाले मुजाकरात में नाकामी के बाद تنظیم کے سینئر نائب صدر محمد احتشام نے اعلان کیا کہ ٹیکسز کے خلاف تاجر 28 اور 29 اکتوبر کو ملک گیر ہڑتال کریں گے.
انفارچونیٹلی مذاکرات ناکام ہو گئے اور انشاءاللہ 28-29 تاریخ کو آل پاکستان انجمن تاجران کے پلیٹ فارم اور جھنڈے کے نیچے پورے ملک میں 2 دن کی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی چین کی قیادت کے ساتھ سی پیک سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی ہے.
پاکستان کی اقتصادی ترقی، علاقائی رابطے اور خوشحالی کو فروغ دینے میں اس سی پیک منصوبے کا جو کلیدی کردار ہے وہ دونوں لیڈرز نے مل کے اس پہ تفصیلی تبادلہ خیال کیا.
ترکی کی فوج نے شمالی شام میں اپنی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے جس کی وجہ سے امریکی حمایت یافتہ کرد پیش فورسز کے ساتھ ان کی براہ راست جھڑپیں بھی ہو سکتی ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس اقدام کا اعلان کیا ہے. رپورٹس کے مطابق شام کے اندر دھماکوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. اقوام متحدہ کی ایک تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ رواں سال مئی میں افغانستان میں امریکی فضائی حملوں میں کم از کم 30 عام شہری مارے گئے تھے. ان حملوں میں نشہ آور اشیاء بنانے کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا تھا. حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں 14 بچے بھی شامل ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. خاص خاص خبریں آپ نے آسیہ انتھر سے سنی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. وسطی افغانستان کے شہر غزنی میں ایک کافی شاپ صرف خواتین کے لیے بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جا رہے تیسرے T20 پر بھی بات ہوگی, لیکن پہلے آج کا بڑا موضوع. موجودہ حکومت کی اقتصادی پالیسیوں اور تاجروں پر لگائے گئے ٹیکسز کے خلاف پاکستان بھر کے تاجر وفاقی دار حکومت میں آج احتجاج کر رہے تھے, جبکہ ملک بھر میں ہڑتال کی کال بھی دے دی گئی ہے. ان مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک تاجر برادری پر لگائے گئے ٹیکسز واپس نہیں لیے جاتے اس وقت تک ان کا احتجاج جاری رہے گا. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
تاجر بچاؤ مارچ کے نام سے شروع کیے گئے اس احتجاج کی کال تاجر برادری کے صدر اجمل بلوچ نے دی تھی اور اس احتجاج میں چاروں صوبوں کے تاجروں کے علاوہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے تاجروں نے بھی شرکت کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہوں نے متعدد بار حکومتی نمائندوں سے ملاقات کر کے چھوٹے تاجروں کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے درخواستیں دیں, لیکن ان کی درخواستوں پر نہ تو کوئی عمل درآمد ہوا اور نہ ہی افسران ٹس سے مس ہوئے. تاجر برادری کے صدر اجمل بلوچ کا کہنا تھا کہ احتجاج اور دھرنا دینے کی سیاست انہوں نے وزیراعظم سے ہی سیکھی ہے. صوبہ پنجاب کی تاجر برادری کے صدر ظہیر چودھری نے الزام عائد کیا کہ ایف بی آر نے محض مال پانی اکٹھا کرنے اور تاجروں سے رقم بٹورنے کے لیے نئے ٹیکسز لگائے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تاجر برادری کسی بھی ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں اور اس اثاثے کو تحفظ دینا حکومت کی ہی ذمہ داری ہے.
ایف بی آر والے کبھی بھی ہمارا کام نہیں کریں گے, ان کے جو راستے بند ہو جائیں گے. اگر یہ راستے بند ہو گئے تو یہ کس طرح وہ چلیں گے؟ کبھی بھی ہمارا یہ کام کریں گے. عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ تاجر ہیں. ایف بی آر کی بات نہ مانیں. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر چور ہے, تو ہم کہتے ہیں چور ہے تو وہ کہتے ہیں, یہ غلط ہے.
صبح خیبر پختونخوا کے تاجروں کی تنظیم کے صدر احسان باچا کا کہنا تھا کہ جن تاجر نمائندوں نے آرمی چیف اور وزیراعظم سے ملاقات کی ہے ان کا تاجر برادری سے کوئی تعلق نہیں ہے.
جو نمائندے آرمی چیف سے ملے ہیں ان کا, جس کو ہم تاجر کہتے ہیں, ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیں نیب زدہ ہیں اور اپنی جان چھوڑانے کے لیے آرمی چیف سے ملے ہیں, اور ہم میں سے نیب پر کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے, کیونکہ ہم چھوٹا کاروبار کرتے ہیں اور اس کے حلال کماتے ہیں. دیکھیں یہ تحریک تو چلے گی مختلف طریقے سے, لیکن میرے میں کے پی کے کے تاجروں کی نمائندگی کرتا ہوں تو میں ان کی وساطت سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے مطالبے نہ مانیں گے تو میں ان سے چابیاں لے کے اور کنٹینر بھر کے وزیر اعظم ہاؤس بھیج دوں گا اور گھر میں بیٹھ جائیں گے. ہمارا یہ احتجاج ہوگا.
مظاہرین نے ایف بی آر کی عمارت کے باہر دھرنا دینے کے لیے مارچ کیا تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے انہیں سرینا چوک اور آپ پارا چوک پر ہی روک لیا اور انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی. ایف بی آر کے حکام نے تاجروں کے ایک وفد کو مذاکرات کے لیے بلایا ہے اور آخری اطلاعات آنے تک مذاکرات جاری ہیں. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
آخری اطلاعات کے مطابق یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے. اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرے کا احوال آپ نے جانا. حال ہی میں چند بڑے سرمایہ کاروں نے آرمی چیف سے ملاقات کی. اس ملاقات میں گفتگو کے بعد کہا گیا کہ عسکری سربراہ کی جانب سے معاملات میں بہتری کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، جبکہ ایک موقف یہ بھی پایا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ صنعت کار بھی پیداوار کم دکھانے پر مصر ہوں. اسی معاملے کی تفصیل بتا رہے ہیں لاہور سے نامہ نگار عمر دراز.
حال ہی میں ملک کے چند بڑے کارخانہ داروں اور کاروباری افراد کے ایک وفد نے اپنے تحفظات پر پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی. ملاقات میں موجود چند شخصیات کے مطابق فوج کے سربراہ کی جانب سے انہیں حالات میں بہتری کی یقین دہانی کروائی گئی. زبیر طفیل بڑے کارخانہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے صنعتکاروں کی نمائندہ تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر ہیں. وہ آرمی چیف سے ملاقات کرنے والے وفد کا حصہ بھی تھے. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ کارخانہ داروں کا بڑا مسئلہ اس وقت ملکی معیشت کا سست ہو جانا ہے.
آپ دیکھیں کہ پہلے کار آٹو مینوفیکچرر ہوتے تھے تو آٹو مینوفیکچرر کی گاڑیاں 6-6 مہینے ایڈوانس بک ہوتی تھیں اور وہ اپنی قیمت سے 2-2 لاکھ روپے زیادہ قیمت پر بکتی تھی. لیکن اب 2 مہینے سے ایسا ہو گیا کہ ایک تو کار کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ 50% کم ہو گئی ہے. اب اگر یہ ایسے ہی رہے گا تو اس سے صرف آٹو انڈسٹری سے گورنمنٹ کو 40 ارب کا ریونیو کم آئے گا.
زبیر طفیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایف بی آر کی جانب سے 50,000 روپے یا اس سے زائد مالیت کا سامان خریدنے پر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ رکھنے کی شرط کی وجہ سے صنعتکاروں کو کیش فلو کا مسئلہ بھی درپیش ہے. اے کے ڈی گروپ کے چیئرمین عقیل کریم ڈھیڈی ملک کی معروف کاروباری شخصیات میں سے ایک ہیں. وہ بھی زبیر طفیل سے اتفاق کرتے ہیں.
باہر بہت سارے نام دینا نہیں چاہتے اپنا. مینوفیکچر بھی تو کچھ نہ کچھ تو کرتا ہوگا نا کہ وہ پریشان ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. سکتا ہے جتنی پروٹیکشن کرتے ہو وہ سکتا ہے پوری نہ دکھاتے ہو. وہ سکتا ہے ضروری نہیں ہے, میں مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کو اپوز تو سبھی کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ہم کو سسٹم میں آنے کے لیے یہ سکڑنا پڑے گا. کب تک ہم اس طرح چلیں؟
تاہم جہاں ایک طرف یہ ملاقات ہوئی تو دوسری جانب پرچون اور تھوک کا کام کرنے والے تاجر اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں. زیادہ تر تاجر اور کاروباری افراد سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں افزائش کے لیے ضروری ہے کہ تاجر خود کو رجسٹر کروائیں. تاہم حکومت نے انہیں رجسٹر کرنے کے لیے یکمشت کئی اقدامات کیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی وقت میں ان تمام حکومتی اقدامات کی وجہ سے غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی جو کاروباری حلقوں میں بے چینی کا سبب بن رہی ہے. عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور.
پشاور ہائی کورٹ میں القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے لیے آپریشن میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی سزا کے خلاف دائر کی گئی نظر ثانی کی اپیل پر سماعت ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے. سماعت ایڈوکیٹ جنرل کی اس درخواست کے بعد ملتوی کی گئی کہ انہیں تیاری کے لیے مزید وقت دیا جائے. پشاور سے تفصیل کے ساتھ عزیز اللہ خان.
قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کے بعد یہ سماعت چوتھی مرتبہ ملتوی کی گئی ہے. آج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹھ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی تو ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے درخواست کی کہ انہیں تیاری کے لیے مزید وقت دیا جائے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت پہلے ہی بہت وقت دے چکی ہے اور اس سے پہلے بھی یہی کہا گیا تھا کہ اگلی سماعت پر مکمل تیاری کے ساتھ آئیں. شکیل آفریدی کی جانب سے قمر ندیم ایڈوکیٹ اور لطیف آفریدی ایڈوکیٹ پیش ہوئے. لطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے عدالت سے کہا کہ اس مقدمے کی سماعت پر زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا, وہ کچھ حقائق سامنے رکھیں گے اور کچھ سابقہ مقدمات جن پر فیصلے ہو چکے ہیں, لیکن عدالت نے کہا کہ انہیں 2 ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے.
بار کوشش کی گئی کہ یہ اس پہ بحث ہو یہ ہو جائے لیکن وہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہو رہا ہے. اب میرے خیال میں ہائی کورٹ میں اس قسم کے ٹیکٹکس یا اس قسم کے تدابیر یا طریقے نہیں چلتے اور شاید کہ 22 تاریخ کو آخری بار ہے کہ ہم اس کو اس کیس پہ بحث کریں گے انشاءاللہ.
خیال رہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو سال 2011 میں پشاور کے علاقے کارخانوں مارکیٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بظاہر ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے لیے امریکہ کی مدد کی تھی، لیکن انہیں سزا شدت پسند تنظیم کے ساتھ تعلق رکھنے کے الزام میں سنائی گئی تھی۔ سابقہ خیبر ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ نے انہیں 3 مقدمات میں کل 23 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کئی سال تک پشاور کی سینٹرل جیل میں قید رہے اور پھر سیکیورٹی خدشات کے باعث انہیں اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کر دیا گیا تھا۔ آج کل وہ پنجاب کے شہر ساہیوال میں انتہائی سخت سیکیورٹی والی جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
چلتی کا نام گاڑی، اور اگر پیٹرول جیب پر بھاری ہو تو پھر سواری کس کام کی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ساہیوال میں 2 ادارے اسی مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان دونوں اداروں نے مل کر پاکستان میں بجلی سے چلنے والے موٹر سائیکلز کی تیاری کا عمل شروع کیا ہے۔ الیکٹرک بائیک کیسے حاصل کی جائے، یا پیٹرول پر چلنے والی بائیک کو الیکٹرک میں کیسے تبدیل کیا جائے، سنیے۔
میرا نام عثمان شیخ ہے، اور میں نے یہ کمپنی اپنے پارٹنر محمد عظیم کے ساتھ شروع کی ہے، اوج ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ وی آر دا فرسٹ اسمبلر ان پاکستان جس نے الیکٹرک بائک پاکستان میں اسمبل کی ہے ود آور اون ڈیزائنڈ سولوشن۔ سو وی ہیو ورکڈ آن دا ڈیزائن آف کنٹرولر، پی ایم ایس، چارجر، ساتھ میں موٹر کا جو کمبینیشن ہے، پھر بیٹری پیک جو ہے وہ ہم یہاں اسمبل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو آلریڈی جو لوگوں کے پاس بائکس ہیں، جو کہ ایک تو ہونڈا کا ایک شیپ تھی، پھر اس کے بعد جتنے چائنیز انجنز کی بیس پہ یہاں پہ لوکل اسمبلر آئے تو انہوں نے اسی کو یوز کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کا ایکو سسٹم ڈیولپ تھا اور پارٹس جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ریڈلی اویلیبل تھے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اسی ڈیزائن کو سامنے رکھتے ہوئے نیو بائک بھی لانچ کی اسمبلی کے طور پر، اور اگر کسی نے اسی بائک میں اپنی کٹ فٹ کروانی ہے تو ایز اے ریٹرو فٹنگ کے طور پر بھی ہم نے وہ سولوشن جو ہے وہ بنایا ہے۔ 70 کلومیٹر تک رینج ہے اس کی، یہ اوور نائٹ چارج ہوتی ہے اراؤنڈ 5 آورز میں، اور اس کا جو اس میں بیسٹ پارٹ ہے، یو سیو اراؤنڈ 1/4 آف دی کاسٹ۔
اس میں کوئی چین گرائی سیٹ نہیں ہے، گیئر نہیں ہے، کک نہیں ہے، گیئر لیور نہیں ہے، موبل آئل نہیں ہے۔ عام بائک جو ہے جو چل رہی ہے 50 کلومیٹر اگر ایوریج کرے گا تو اس کا ماہانہ خرچ تقریباً آئے گا 4000 روپیہ، تو اس کا آئے گا تقریباً 500 روپیہ۔ اس کو گرین ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اس میں ایک تو ہے دھواں نہیں ہے، وہ ایک تو اس کے پولوشن اس میں ہے ہی نہیں، اور دوسرا شور بھی نہیں ہے۔ انڈیویجولی بندہ بائک لیتا ہے اس کو تو ہے ہی ہے، اس کا ملک کی اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہے۔
اس کی جو پرائس ہے وہ 88,000 روپیز ہے، رائٹ، اور ابھی ہم اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے مزید پلاننگ کر رہے ہیں۔ آپ نے کٹ لگوانی ہے تو 5,500 پر منتھ آپ کو انسٹالمنٹ ہوگی جو ایک سال چلے گی۔ اتنا ہمارا آگے کا فیوچر ہے وہ سارا الیکٹریفائی ہو رہا ہے، آٹو موبائل ہے، وہ ساری جو ہے وہ الیکٹرک بائکس، الیکٹرک وہیکلز میں کنورٹ ہو رہی ہے۔
جب کسی چیز کو فیسلیٹیٹ کرنا ہو، کسی چیز کو آگے لے کے آنا ہو، تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا گورنمنٹ کو چاہیے کہ فیسلیٹیٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔
دلچسپ ویڈیو bbcurdu.com پر بھی موجود ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سربین یہاں نصف کو پہنچا، ذرا دیر میں آپ کھیلوں کی خبریں سنیں گے اور پھر پروگرام میں دیگر موضوعات شامل کریں گے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبد الرشید شکور۔ پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں آج لاہور میں تیسرے اور آخری T20 انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ پاکستانی ٹیم سیریز کے پہلے 2 میچز ہار چکی ہے اور اسے وائٹ واش کے خطرے کا سامنا ہے۔ پاکستانی ٹیم اس سے پہلے صرف 1 مرتبہ T20 سیریز 3-0 سے ہاری ہے، جب 2015 میں انگلینڈ نے اسے متحدہ عرب امارات میں 3-0 سے ہرایا تھا۔ یہ سیریز جیتنے کے باوجود سری لنکا کی عالمی رینکنگ 7ویں ہی رہے گی۔ خواتین ون ڈے انٹرنیشنل میں آسٹریلیا نے سری لنکا کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سری لنکا نے جیان گانی کی سینچری کی بدولت 8 وکٹوں پر 195 رنز بنائے۔ آسٹریلیا نے مطلوبہ اسکور 27ویں اوور میں پورا کر لیا۔ ایلیسا ہیلی نے صرف 76 گیندوں پر ناقابل شکست 112 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کے بیٹس مین ہاشم آملہ نے انگلش کاؤنٹی سرے کی طرف سے کھیلنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔
हाशिम आमला ने अगस्त में बैन अलाकवामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। बर्तानिया के एंडी मरे को शंघाई मास्टर्स में इटली के फैबियो फॉगनीनी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आलमी नंबर दो रॉजर फेडरर ने स्पेन के एल्बर्ट रामोस को 6-2 और 7-6 से हरा दिया। गैरेथ बेल ने एक मरतबा फिर रियल मैड्रिड छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। इससे पहले भी उन्होंने चाइनीज लीग में शमूलियत की कोशिश की थी, लेकिन रियल मैड्रिड की जानिब से ट्रांसफर फीस तलब किए जाने के सबब ये कोशिश कामयाब साबित न हो सकी। इंग्लैंड और चेक रिपब्लिक की फुटबॉल टीमें जुमे को यूरो क्वालिफायर में मध्य मुकाबिल होंगी। इंग्लैंड के फुटबॉलर टैमी अब्राहम ने वाजे कर दिया है कि अगर ग्राउंड में उनकी टीम को नस्ली तासुब पर मबनी फिक्रों का सामना हुआ तो पूरी टीम मैदान छोड़कर बाहर आ जाएगी। इंग्लैंड का अगला मैच पीर के रोज बल्गारिया के खिलाफ है, जिसके स्टेडियम में महदूद तादाद में तमाशाइयों की इजाजत दी गई है, क्योंकि इस साल जून में नस्ली तासुब पर मबनी वाकयात इस मैदान में पेश आ चुके हैं।
खेलों की खबरें आपने सुनी। लाहौर में खेले जा रहे तीसरे T20 में ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि श्रीलंका ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को 148 रन का हदफ दिया है। मैच पर बात करने के लिए नुमाइंदा अब्दुल रशीद शकूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शकूर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो टारगेट मिला है 148 रन का, इसे आप कैसे देखते हैं, कितना आसान या मुश्किल है पाकिस्तान के लिए?
देखिए, T20 में कुछ भी मुमकिन है और हर चीज जो है वो पॉसिबल है। 147 रन श्रीलंका ने जो बनाए हैं इस सीरीज में उसका सबसे कम स्कोर है। इससे पहले उसने 165, 182 इस तरह का स्कोर किया था और पाकिस्तान को मुश्किल से दो चार किया था। लेकिन श्रीलंका की जो बॉलिंग है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके जो स्पिनर हैं हसरंग का, वो मुश्किल उन्होंने पैदा की हैं पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए। तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा और वाइट वॉश से बचना होगा, क्योंकि जो इनके सर पर तलवार लटकी हुई है। 148 रन पाकिस्तान बना सकता है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान को जिम्मेदारी और एहतियात से बैटिंग करनी होगी और अपने शॉर्ट सिलेक्शन का जो है वो खास तौर पर ख्याल रखना होगा।
अच्छा शुक्र, कुछ बात अब तक की कारकर्दगी के हवाले से हम ये करें कि कोच पर बहुत तनकीद आ रही है, तो पाकिस्तान को T20 फॉर्मेट के लिए हार्ड हिटिंग कोच की जरूरत है ऐसा कहना है, जबकि टीम रैंकिंग में जब पहली पोजीशन पर आई थी तो उस वक्त तो कोई कोच नहीं था। क्या कोच वजह है कारकर्दगी की?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोच तो था। जब पाकिस्तान टीम बनी, जब पाकिस्तान की टीम टेस्ट क्रिकेट की नंबर एक टीम बनी मिसबा की कप्तानी में, उस वक्त मिकी आर्थर कोच थे। जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड नंबर वन बनी हुई T20 में, उस वक्त भी मिकी आर्थर की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। असल में सूरत हाल ये है कि जो हमारी जो कौम है, शायकीन है, हमारे जो मीडिया के कुछ लोग हैं, वो बहुत जल्दी तवक्कुआत
चाहते हैं कि T20 के फॉर्मेट के लिए कोई हार्ड हिटिंग कोच खुसूसन होना चाहिए।
नहीं, देखें, बात यह है कि हार्ड हिटिंग से क्या मतलब है, एग्रेशन या जहराना मिजाज का या किस तरह का, क्योंकि ये पाकिस्तान ने तीनों फॉर्मेट के लिए मिसबा को बनाया है और ये वो टीम है जो जीती हुई आई है, ये 11 सीरीज लगातार जीती है। अब कुछ मैचों में उसे शिकस्त हुई है, तो थोड़ा सा हमें सबर करना होगा। एक्सपेरिमेंट जरूर हुए हैं जो बैकफायर हुए हैं, जैसे अहमद शहजाद और उमर अकबर को जो टीम में लाया गया तो वो हैरानकुन फैसला था। तो अब थोड़ा सा ये सबर करना पड़ेगा शायकीन को भी, और अगली कुछ सीरीज जो है वो देखनी होंगी। तो उम्मीद है कि वर्ल्ड T20 से पहले पाकिस्तान की टीम जो है एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकती है। डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो कितना अब इस चीज को सीरियस लेते हैं।
बहुत शुक्रिया शुक्र हमसे बात करने के लिए। अब्दुल रशीद शकूर हमसे बात कर रहे थे। और अब एक नजर डालते हैं BBC उर्दू की वेबसाइट पर। स्पेन में उम्र रसीदा अफराद के लिए एक गांव मखसूस कर दिया गया है। इसके अलावा एक दिलचस्प फीचर इस बारे में भी मौजूद है कि अमेरिका का सबसे बड़ा सीरियल किलर कौन है। इसके अलावा मैच की भी खबरें पढ़ना चाहें तो विजिट कीजिए bbcurdu.com। प्रोग्राम में दीगर मौजूद शामिल करते हैं। व्हाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाक़े की तहकीकात को गैर कानूनी करार देते हुए किसी भी किस्म के तआवुन से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब ईवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना है कि मवाक़े की कार्रवाई कानूनी है और इसके लिए हाउस वोट की जरूरत नहीं। BBC के नामा निगारों का मरासा पेश कर रही हैं कोमल फारूक।
व्हाइट हाउस के वकील पैट किपलून ने 8 सफहात पर मुश्तमिल एक खत हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को इरसाल किया है, जिसमें सदर ट्रंप के मुआखसे की तहकीकात को गैर कानूनी करार दिया गया है। खत में ऐवाने नुमाइंदगान की स्पीकर और डेमोक्रेट रहनुमा नैन्सी पेलोसी और कांग्रेस की तीन कमेटियों के डेमोक्रेट सरबराहान को मुखातिब करके इल्जाम आयद किया गया है कि वो ऐसी तहकीकात कर रहे हैं जो इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। खत में कहा गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखसे के लिए गवाहों पर जिरा, मुखबिरों की शहादत, शवाहिद तक रसाई और شہادت کی تحریری نقول ان تمام معاملات میں آئین، قانون اور ماضی کی روایات کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ خط میں ڈیموکریٹس پر 2016 کے انتخاب کے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کرنے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا یورپی یونین کے سفیر کو ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے گواہی دینے سے روکنا طاقت کا غلط استعمال تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی صدر کے مواخذے کے لیے کانگریس نہیں گیا، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت سنگین ہے۔ صدر کانگریس کو ان حقائق کو حاصل کرنے سے روک رہے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس طرح کا رد عمل طاقت کا ناجائز استعمال ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم مواخذے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کے قانون سازوں کی تنظیم کاکس کی نائب چیئر پرسن کیتھرین کلارک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ پڑتا جا رہا ہے۔
صدر کی کرپشن واضح ہے، ہمارے پاس مخبر کی شکایت ہے، ہمارے پاس وائٹ ہاؤس کے صدر کی یوکرین کے ہم منصب کے ساتھ کال کا خلاصہ موجود ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی قومی سلامتی کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔
ڈیموکریٹس کی طرف سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی ہم منصب سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے والے مخبر کی شناخت چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کسی کے الزام کی بنیاد پر امریکہ کے صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی، اور خاص طور پر الزام لگانے والے اس شخص کے بیانات پر جسے صدر جانتے تک نہ ہوں اور اس پر جرح بھی نہ کر سکتے ہوں۔ یاد رہے کہ ڈیموکریٹس کی سربراہی میں ہونے والی تحقیقات میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کی تقریباً 4 کروڑ امریکی ڈالر کی امداد روکی، اور کیا 25 جولائی کو صدر ٹرمپ نے یوکرینی ہم منصب کو ایک فون کال میں کہا کہ وہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے بارے میں، جو آئندہ انتخابات میں ڈیموکریٹس کے مرکزی امیدوار بھی ہیں، تحقیقات کریں۔
معاملے کی تفصیل آپ نے کومل فاروق سے سنی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی کی سختیوں کے دوران زندگی اب تک غیر معمولی خاموشی میں ڈوبی ہے۔ ایسے میں ضلع بڈگام میں ایک فلاحی ادارے نے 40 غریب خواتین کی شادی کی اجتماعی تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
وادی میں 2 ماہ سے خوفناک خاموشی ہے۔ اسی تعطل کے بیچ بڈگام کے خان صاحب علاقے میں ایک رضاکار تنظیم نے 40 غریب اور یتیم لڑکیوں کی اجتماعی شادی کا اہتمام کیا۔
رضامندی کے ساتھ اپنا نفس محمد شفیع ڈار، بلا عبد الحمید ڈار، ساکن زوگو خارین، اس کے نفس کو بخشتی ہو؟
yes.
آپ سب بخشتی ہو؟ اچھا، 50,000 روپے کے عوض میں؟ بارک اللہ علیکم و جمع بارک اللہ علیکم۔
ہمارے ساتھ عبدالحق ہیں جو یہاں کے لوکل امام ہیں، اور انہوں نے ہی یہ سارے جو ہے نکاح پڑھوائے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں، عبدالحق صاحب، یہ کتنی اہم محفل ہے، اس سے کیا پیغام جائے گا باہر؟
آج کل حالات خراب ہے، بہت کشیدہ حالات ہے، بہت کشیدہ حالات کے اندر اس طرح کی شادیاں ہونا یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور بہت اہم درجہ رکھتی ہے، بہت ضروری ہے۔ پسماندگی کے علاقے میں اگر اس طرح کی سادگی کے ساتھ نکاح کا انعقاد کیا جائے، یہ بہت ہی بہتر قدم ہے ہمارے لیے۔
یہ سبھی لڑکیاں اور لڑکے پسماندہ خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اجتماعی شادیوں کی روایت عام ہو جائے۔
ہماری یہاں پہ شادی میں بہت خوش قسمت ہے، کیونکہ ہم ایسے سماج میں ہماری شادی ہونا بہت 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 فخر کی بات ہے، اور ہم ایسے نکاحوں کے بارے میں اور اپنی بہنوں کو بولتے ہیں، آسانی طریقے سے آپ یہاں آؤ اور اپنے نکاح کرواؤ۔
مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے، کشمیر کے حالات کی وجہ سے یہاں شادی نہیں ہو سکتی ہے، یہاں ان پہ نکاح کرتی ہے۔ آج یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا نکاح ہوا ہے، ہمارا بھی ہوا ہے، اس لیے اس کا بہت شکر گزار ہوں۔
50,000 روپے کے مہر کے عوض میں بخشتی ہے، آپ کو قبول ہے؟ آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا، بارک اللہ لکما وجمع بینکما۔
رضاکاروں کا کہنا ہے کہ یہ قدم انہوں نے غربت سے شادیوں میں تاخیر کے عمل کو روکنے کے لیے اٹھایا ہے۔
اقتصادی حالات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں فائنانشل سپورٹ کے لیے تو یہی ریزن ہوتا ہے کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں اپنی زمین نہ بیچنی پڑے، کیونکہ جس علاقے میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایگریکلچرل لینڈ ہے، وہاں پہ بیرن لینڈ، تو اس کو بیچ کر بھی ان کو کوئی خاص فائدہ ہوتا ہے۔
اجتماعی نکاح کی یہ محفل انتہائی سادہ تھی، مگر لڑکیوں کو شادی کے جوڑے اور دوسرے ساز و سامان بھی دیے گئے، جن کی وجہ سے ان کے مایوس چہروں پر رونق لوٹ آئی۔ ریاض مسرور، بی بی سی نیوز، بڈگام، کشمیر۔
افغانستان کے شہر غزنی میں پہلی مرتبہ صرف خواتین کے لیے ایک کافی شاپ کھولی گئی ہے۔ غزنی شہر سے نامہ نگار محمد پانیا کی رپورٹ، خدائے نور نثر کی زبانی۔
اس کافی شاپ میں ہر طرف صرف خواتین ہی نظر آ رہی ہیں۔ کافی شاپ کے ایک کونے میں بیٹھی لڑکیاں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مشغول ہیں، جبکہ دوسرے کونے میں مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ معصومہ روش وہ طالبہ ہے جنہوں نے اس کافی شاپ کی بنیاد رکھی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ غزنی شہر جیسے بدامن جگہ جہاں خواتین ہر وقت دباؤ میں ہوتی ہیں، وہاں انہیں خواتین کے لیے کافی شاپ کھولنے کا خیال کیسے آیا؟
یہ کافی شاپ میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ خواتین کو ذہنی سکون والی جگہ ملے۔ یہاں خواتین سالگرہ اور دیگر پارٹیاں بھی کر سکتی ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ خواتین کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ آہستہ آہستہ ہمارے کلچر کا حصہ بنے۔
یہاں نہ صرف گھریلو خواتین بلکہ طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین بھی آتی ہیں۔ زینب اپنے 4 ماہ کے بچے کے ساتھ یہاں آئی ہے، کہتی ہے یہاں بھی وہ خاوند کی مرضی سے آئی ہیں۔
گھر میں جب کام سے تھک جاتے ہیں تو یہاں آتے ہیں، یہاں خوشی کا احساس ہوتا ہے اور ساری خواتین آتی ہیں۔ ابھی میرے خاوند کی کال آئی تھی اور میں نے ان سے کہا کہ میں کافی شاپ میں ہوں، کچھ کہتے نہیں ہیں اس پر۔
فوزیہ بھی غزنی شہر میں ایک سرکاری دفتر میں کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں خواتین کو بھی مردوں کی طرح سیر و تفریح کا حق حاصل ہے جو